सुनाना है, इससे पहले हमारे इस इलाके में कर्नाटक में एक संसद मर्दमशुमारी आज़ादी के बाद ये दूसरी मर्तबा हो रही है और इसमें इस्लाम का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है अगर हम हजरात उसकी तरफ तवज्जो दें। मैं मेरी रोटी की फिक्र में रह गया कि सारी दुनिया भाग में जाए, मुझे मेरा काम है मैं हूँ, तो फिर ये इस्लाम से भी दुश्मनी है और मुसलमानों से भी दुश्मनी है। तवज्जो करें, सारे अखबारों में इस तरफ बात आ रही है, बाजने अल्लाह के बंदे हैं जो अखबार नहीं पढ़ते, ठीक है उनकी अपनी मर्जी है, वाजिब और फर्ज तो नहीं है, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हालात को जानना भी जरूरी है। अब ये जो मर्दमशुमारी हो रही है ये मजहब के एतबार से हो रही है, हम लोग मुसलमान हमारी जो तादाद है ये तादाद हमें खुद नहीं मालूम है और हुकूमत सारी दुनिया की खुसूसन हिंदुस्तान की हुकूमत हमारी तादाद जाहिर करने को डरती है। उन्हें मालूम है कि अगर ये मालूम हो जाए कि मुसलमान इतने ज्यादा हैं तो फिर खतरा है हुकूमतें उलट जाने का, खतरा है हुकूक के मुतालबे का। इन सबसे बचने के लिए हजार किस्म की साजिशें होती हैं। अब अच्छी नीयत के साथ एक मर्दमशुमारी हो रही है, वो लोग आएंगे हफ्ते से शायद 11 तारीख से, उसमें सवालात होंगे, कुछ आम किस्म के सवालात हैं उनकी अहमियत नहीं है, अहम सवालात भी हैं। एक सवाल है, तुम्हारा दीन क्या है? लाजिमी बात है इस्लाम, हम सब लिखेंगे इंशाअल्लाह ताकि मालूम हो जाए कि इस्लाम के मानने वाले कितने हैं। उसके बाद एक सवाल है, मजहब क्या है? हालांकि गैर जरूरी सवाल है लेकिन शायद उनका भी वही मकसद है कि मुसलमानों को बांट दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, मुसलमान बढ़ गए और टुकड़े टुकड़े हो गए तो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। वाअतीउल्लाह वरसूलहु वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम। अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, आपस में बटो नहीं, झगड़ो नहीं, इख्तिलाफ ना करो, टुकड़े हो गए तो फतफशलू भीगे पड़ जाओगे, वतज़हब रिहुकुम तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, रौब खत्म हो जाएगा। कैसे? अब लिखा कोई शख्स ने कि मैं बरेलवी हूं, मैं देवबंदी हूं, मैं सलफी हूं, मैं तबलीगी हूं, तो फिर तो मुसलमान दुनिया में गिनती के रह जाएंगे। इसलिए मजहब का जब सवाल आए तो वहां लिखे इस्लाम मुसलमान कि मैं मुसलमान हूं, एक अल्लाह को मानने वाला मुसलमान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाला मुसलमान है, इसलिए मैं मकतबे फिक्र मेरा अलग होगा लेकिन मैं मुसलमान। अजीब हो गए हम लोग। हमारा एक मुकर्रर कहता है भरे मजमे में, पता नहीं क्यों हर आतंकवादी देवबंदी है, इस्लाम को बदनाम करने की इससे बड़ी साजिश और क्या होगी? वो कहना क्या चाह रहा है? की बदनामी होगी, उसी का नतीजा तमिलनाडु के एक छोटी सी जमात जनता पार्टी उसका नाम है, उसका एक बड़ा है लाभ दिया हुआ शख्स, वो हुकूमत से मुतालबा करता है कि मुसलमान को वोट का हक न दिया जाए। अब मुसलमान है ही नहीं, कहां है मुसलमान? बिल्कुल मुख्तसर है, अल्लाह की कसम मेरे पास रिकॉर्डेड मजमून है, अपनी तरफ से नहीं कहता, वो कहता है। शिया हमारे हैं, बरेलवी हमारे हैं, ये उसके अल्फाज, सलफी हमारे हैं, यानी वो जो दूसरे को एक दूसरे को काफिर कहते हैं, उसके नतीजे में पूरे हमारे हो गए। है ही कितने मुसलमान, उनको क्या वोट का हक दिया जाए? ये हमारे इख्तिलाफ का नतीजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा, अबू बकर भी तुम कब पढ़ते हो? ईशा की नमाज के बाद पढ़ लेता हूँ या रसूल अल्लाह, बेहतर तो था तहज्जुद के बाद पढ़ना, लेकिन मुझे खतरा महसूस होता है कि जाग नहीं पाया तो फिर विद्युत छूट जाने का खतरा है, इसलिए पढ़कर सो जाता हूं। उमर तुम कब पढ़ते हो मित्र? तहज्जुद के बाद या रसूल अल्लाह। सो गए तो मजाल है कि उमर को नींद आ जाए और तहज्जुद का वक्त गुजर जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी ठीक, तुम्हारा एतिमाद सही है, उनकी बेएतिमादी सही है। ये है इख्तिलाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जमात जा रही थी असर की नमाज खुला जगह पढ़ना, अब पता नहीं रफ्तार में कमी हो गई या क्या वजह हुई, जैसे बेंगलोर में ट्रैफिक की वजह से वादा के मुताबिक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो गया, वो लोग पहुंच नहीं पाए, असर का वक्त खत्म हो रहा है, कोशिश के बावजूद खतरा है कि मगरिब का वक्त आ जाएगा, असर की नमाज कजा हो जाएगी। अरे देखिए वजू कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये नहीं था कि असर की नमाज कहीं पढ़ना नहीं, मतलब ये था कोशिश करके जल्दी से जल्दी पहुंचो, इसलिए पहुंच नहीं पाए, नमाज को कजा नहीं करने का मुस्तकिल आर्डर है, जल्दी वजू करो, नमाज पढ़ो। कुछ सहाबा नमाज पढ़ लिए, कुछ सहाबा ने कहा नहीं, हम नबी के हुक्म से आगे नहीं बढ़ेंगे, आका ने हुक्म दिया है कि फला जगह जाकर असर पढ़ो, चाहे ईशा हो जाए चाहे दूसरा दिन हो जाए, असर हम वही पढ़ें, वैसे ही जाकर पढ़ें। वक्त हो चुका था, वापस आए दरबारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों खबरें मिली कि कुछ ने नमाज पढ़ ली कुछ ने नहीं पढ़ी। आका ने फरमाया, जिन्होंने नमाज पढ़ी उन्होंने अच्छा किया, जो वहां जाकर नमाज पढ़े वो अच्छे, दोनों सही काम है। उनको दीन के अंदर की हकीकत जानकर उन्होंने असर की नमाज को कजा होने से बचा दिया, उन्होंने जाहिर पर हुक्म किया, आका बोले वहां पढ़ो वहां पढ़ लिए, वो भी सही है ये भी सही है। ये है इख्तिलाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर मैं गुजरा तुम्हारे घर से, तुम बाहर नमाज पढ़ रहे थे, आहिस्ता पढ़ रहे थे, अस्मातू या रसूल अल्लाह, मैंने तो उसे सुनाया जिसे मैं सुना रहा था, वो सुन रहा था, दिलों की धड़कन सुनता है, तो कुरान की तिलावत तो लाजमी तौर पर सुनता है वो परवरदिगार। उमर तुम्हारे घर के पास से भी गुजरा, तुम जोर जोर से पढ़ रहे थे। मैं बेखबर सोने वालों को जगा भी रहा था, कुरान भी पढ़ रहा था, शैतानों को भगा भी रहा, दो तीन काम एक साथ हो रहे थे मेरे। अच्छा अच्छा, तुम जरा आहिस्ता कर लेना, तुम जरा आवाज बढ़ा लेना, सही तो हो तुम दोनों, कोई भी गलत नहीं है। इन इख्तिलाफ की बिना पर काफिर कहते हैं, तो क्या हम सहाबा को काफिर कहेंगे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के बेटे, काबे से तेज लगाए बैठे थे। एक शख्स आया, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जवाब दे। बोलो भाई, बदर की जंग इस्लाम की पहली और हक बातिल के दरमियान फैसले की जंग, उसमें उस्मान गनी थे नहीं थे? अल्लाहु अकबर, उसने आवाज उठाई। बैअतुर रिज़वान, दरख्त के नीचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने मुआहदे के लिए हाथ बांधा, हाथ पर हाथ रखा, और कुरान ने उनके बारे में कहा, हाथ पर हाथ रखने वालों के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर अपना हाथ रखकर पैमान बांधने वालों के बारे में कहा, लकद रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह मुमिनीन से राजी हो गए, इद युबायिउनक तहत अश्शजरति, जब वो बयात कर रहे थे दरख्त के नीचे, फालिमा मा फी कुलूबिहिम, उनके दिलों की कैफियत अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ने वादा फरमाया उन सब के लिए जन्नत का, 1300 सहाबा थे। उस बयात रिजवान में उस्मान गनी थे, उसने तो था पूछा था, मैं थे कह रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया नहीं थे। अल्लाहु अकबर, मेरा काम हो गया, मेरा मकसद हल हो गया। वो असल में हजरत उस्मान गनी का दुश्मन था, यानी अभी एक जमात उनको बुरा भला कहने वाली है दुनिया में, किताबें लिखी गई उनके खिलाफ। अब मैं नाम बोलकर जमात को बदनाम करूं जरूरत नहीं। वो उठकर जाने लगा तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया रुको, तुमने पूछा मैंने बता दिया, लेकिन क्यों नहीं थे ये तो तहकीक करते। बैठो मैं बताता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत रुकैया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब चचा के बेटे को दिया था, उससे शादी हुई थी। जब दुश्मन बना अबू लहब तो उसने उतबा अपने बेटे पर दबाव डाला कि तलाक दे दो, दुश्मनी निकालने का ये एक तरीका है कि गलती दुश्मनी किसी और से, बदला किसी और से लिया जाए। ये नामतों की अलामत है, सीधे सीधे बता रहा हूं। वो जो लोग संधि के गुस्से को बहू पर उतारते हैं, ये सब उसी कैटेगरी के हैं। जो भी यहां भी बैठे होंगे सब उसी जमात के, गलती तो बच्ची की होती नहीं, वो उतारा जाता है गुस्सा उस पर। वला तज़िरु वाज़िरतुन वज़्रा उख़रा, क़यामत में अल्लाह किसी का बोझ किसी के सर पर नहीं डालेंगे। वो इंसाफ वाले हैं, आदिल हैं। कंसर शयाती अल्लाह हिदायत दे। तो बच्ची है वापस घर आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान अली रजी अल्लाह अन्हु से उस बच्ची की शादी कर दी। दामाद बन गए आका के। हबशा की तरफ हिजरत किए, फिर मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत किए। इसलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, नहीं ज़ुल्हिज्रतैन कहा जाता है। दो हिजरत वाले बदर के वक्त उनकी अहलिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बच्ची बीमार हो गई, सख्त बीमार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान अली से, उस्मान तुम मेरे नाइब बनकर रहना, मैं तुम्हें अपनी जगह छोड़कर जा रहा हूं, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। तुम समझना कि तुम जन्म में शरीक हो और बदर में जो माने गनीमत मिला उसमें हजरत उस्मान गनी का हिस्सा निकाला गया, ये बताने के लिए कि वो जन्म में शरीक थे। आका की बच्ची का इंतकाल भी हो गया उसी बीमारी में। फिर आका ने अपनी छोटी बच्ची उम्मे कुलसूम को हजरत उस्मान गनी से ब्याह, इसलिए हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। दो नूर वाले किसी नबी की दो बेटियों से किसी ने शादी नहीं की सिवाय हजरत उस्मान गनी की। किसी हजरत आदम से लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी की दो बच्चियों से किसी ने शादी नहीं की सिवाय हजरत उस्मान गनी के, उनको वो फजीलत मिली। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फरमाया कि तुम्हें उनका गायब रहना तो समझ में आया है, क्यों नहीं रहे ये समझ में नहीं आया तुम्हें, उनसे नाराजगी। बैत रिज़वान मौजू से हट रहा हूं, बात आ रही है तो बोल रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्का मुकर्रमा उम्रे के लिए तशरीफ ले गए तो रास्ते में एक जगह रुककर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी अपने दामाद को भेजा, जाओ मक्का जाकर हालात देख कर आओ, तुम मक्के में भी मोतबर हो, साहिब हैसियत रहे हो, सही रहे हो, लोग तुम्हारा बड़ा एहतराम करते हैं, जाओ देख कर आओ। हजरत उस्मान गनी तशरीफ ले गए, लोगों ने उनको रोक लिया, बहुत दिनों बाद आए थे, किसी भी वजह से रोका रोका। यहां शैतान ने बात फैला दी, लोगों ने हजरत उस्मान गनी को शरीक कर दिया। वो तो गए थे सफीर की हैसियत से, अम्बेसिडर की हैसियत से गए थे, और सफीर को कत्ल करना सारी दुनिया में जुर्म है, इसलिए सहाबा को आका को बहुत तकलीफ हुई उस खबर से, और सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत की कि उस्मान गनी का बदला लेंगे, लड़ेंगे या खत्म हो जाएंगे या सारे अरब को खत्म। कर देंगे। जब उनको मालूम हुआ ये हालत है तो सारे भागे हुए आए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बयाते रिजवान तो उस्मान रजी की वजह से हुआ है, तुम उस्मान रजी को उससे अलग करना चाहते हो। अरे यूं समझो कि 1300 सहाबा को उस्मान रजी ने जन्नत में दाखिल करवाया है। नहीं समझ में आता। देखिए साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज फरमाया, एक ही एक हज, ईमान आने के बाद, हज फर्ज होने के बाद, उसका नाम हजरतुल वदा। सवाल आपका मजमा बहुत बड़ा मजमा है, मामूली बात नहीं है। इतना बड़ा मजमा को देखें, इख्तिलाफ, एहराम कहां बांधे। एक सहाबी फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम तो बांध लिए थे, लेकिन नियत जो फरमाए वो फुला पहाड़ी जो आई ऊंची, उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत करके तस्बीह पढ़ा है, इसलिए एहराम की असल जगह वो पहाड़ी है। ये एक सहाबी की रिवायत। और एक सहाबी रिवायत करते हैं, मैंने अपने कानों से सुना है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खीमे से बाहर आने के बाद जानवर पर सवार होते हुए तलबिया पढ़कर, नियत करके तलबिया पढ़ते हुए सुना। इन इख्तिलाफ को जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से बयान किया गया कि हजरत ये अलग अलग तीन रिवायतें हैं, क्या मामला है, मुझे मालूम है। सवाल आपका मजमा, सारा मजमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगकर तो नहीं रह सकता। मैं था शुरू से आखिर तक साथ में, और या जिस सहाबी ने कहा, असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हुलैफा में खीमे के अंदर एहराम बांधा और 3 मर्तबा तलबिया पढ़कर एहराम की अपनी इब्तिदा की। वो जो बाहर थे उनको नहीं मालूम है। बाहर तशरीफ लाए, ऊंट पर जब सवार हुए तो आपने फिर तलबिया पढ़ा, तो जो करीब थे उन्होंने समझा कि अभी एहराम बांधा, नियत अभी की है। और तो और भी बहुत बड़ी जमात दूर थी, पहाड़ी पर चढ़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उठे बैठे तलबिया पढ़ो। पहाड़ी पर चढ़ते हुए फिर तलबिया पढ़ा तो लोगों ने जो वहां थे ये समझ लिया कि अभी आका ने नियत फरमाई। इसलिए तीनों रिवायतें गलत नहीं है, किसी सहाबी पर कोई इल्जाम लगाया नहीं जा सकता, उनकी उनकी समझ थी। अब देखो, 1,25,000 सहाबा, उनको ये एहसास तो हुआ कि हमसे गलती हुई। पहले कलकली मारना था, फिर कुर्बानी देनी थी, फिर सर के बाल निकालने थे। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, मैंने पहले कुर्बानी दी फिर कंजरियां मारकर उसके बाद बाल निकाला, अब क्या फरमाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बाल लगा लो, जो बाल निकल गए फिर एक बार कुर्बानी दो बोलेंगे। 1,25,000 पहला इस्लाम गुंजाइश तो देनी चाहिए। और वो जिस सहाबी ने पूछा, उनको ये एहसास था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हो गया, अब क्या करें। आका ने फरमाया चलो काम करो, कोई बात नहीं। ये दरबारे नबूवत से नेमत के तौर पर उनको मिल गया। एक सहाबी फरमाते हैं, मैं बैठा रहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लोग आते रहे बोलते रहे कि या रसूलल्लाह, मैंने पहले कलकलियां तो मारी लेकिन बाल निकालने के बाद قربانی دی فال ولا حرج. میں نے پہلے بال نکال لی اس کے بعد کنکریا ماری فال ولا حرج. میں نے پہلے قربانی دے دی پھر جا کر کنکریا ماری فال ولا حرج. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملتا رہا. وہ تو دربار ہے نا. وہ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ روزے میں میں نے بیوی سے مل لیا روزے میں. ارے کیا کیا تم نے؟ ایک غلام آزاد کرو. میری وہ حیثیت نہیں ہے یا رسول. 60 مسکینوں کو کپڑا دو. یہ طاقت بھی نہیں ہے میرے پاس. 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اتنی بھی طاقت نہیں ہے. 60 روزے مسلسل رکھو. رمضان کا یہ حال ہوا. غیر رمضان میں 60 روزے کہاں رکھ پاؤں گا یار. یہ کیا مشکل آدمی ہے. آقا نے چادر بچھائی. صحابہ سے کہا کچھ لا کر ڈالو اس میں. اب جن کے پاس جو تھا لا کر ڈالے اور ایک چھوٹا سا ڈھیر جمع ہو گیا. چار کونا پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور اس جرم کرنے والے صحابی کو غلطی کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کو دیا. جاؤ جا کر کسی غریب کو صدقہ کر دو تمہاری غلطی کی سزا میں. انہوں نے لے کر کہا یا رسول اللہ ان دو پہاڑوں کے درمیان میں ہی غریب. جاؤ تم ہی رکھ لو. اب یہ دربار ہے وہاں سے کچھ بھی مل سکتا ہے. تصور سے باہر ملتا ہے. داما میں بگہ تنگو گلے اس نے تو بسیار گنچی نے تو بس تنگی ہے داما گلاتا ہے. اب حضرت امام شافعی امام احمد بن حنبل رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترتیب ضروری نہیں ہے. اس زمانے میں صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا تھی اللہم فقہ فی الدین. اے اللہ دین کا علم دین کی سمجھ دے اس کو فقہ کا علم دے. چونکہ یہ دعا صحابہ کو معلوم تھی اس لیے سر مسائل پوچھتے تھے اسے. انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا جاؤ کوئی بات نہیں ہے یہ ان کے لیے ہے خاص تمہارے لیے نہیں ہے. اب جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ غلطی ہے تو ایسا مت کرو. ترتیب ہی سے کرو. پہلے کنکریاں مارو پھر قربانی کرو پھر بال نکالو. ضروری ہے ترتیب. اگر ترتیب بگاڑ لے تو قربانی ایک زیادہ دینا واجب. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا. آپ کو ترتیب ضروری نہیں دکھتی نہ کریں. اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی پر کچھ کہیں. یہ کہاں کا ایمان. یہ کہاں کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. عجیب و غریب ہو گئے ہم لوگ. چھوٹے چھوٹے اختلافات کو لے کر امت کو توڑ دیے اور مستقل محنت چل رہی ہے. نحمدہ و نصلی علی تقریر شروع کرتا ہے مقدم ختم تک اس جماعت کو گالی اور اس جماعت کو گالی. ہماری جماعت ایک جنت کے لیے ہے. اللہ میاں بیکار میں کروڑوں جنت بنا کر رکھے. مسلمان تو جانے والے نہیں ہیں. انہوں نے اللہ میاں دینے پر راضی ہیں یہ لوگ دینے پر راضی نہیں. سب جہنمی ہے. میں ایک ہی جماعت ہوں جو جنتی ہے. اس کا نتیجہ وہ شخص کہتا ہے وہ ہمارے ہی وہ ہمارے ہی. کیوں؟ جیسے ہم مسلمانوں کو غلط بولتے ہیں ویسے ہی یہ لوگ بھی مسلمانوں فتاوا میں ہیں. زبانی نہیں، فتاوی ہے ابھی جمعہ مسجد کے فتوی کتابوں کی کتب خانے میں میں نے فتاوی ڈھونڈا تو اس میں لکھا ہے کہ دیوبندی سب کافی تھی. تو اللہ کے لیے جب وہ لوگ آئے تو اس میں لکھے، تیاری کرے کہ کیا لکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزول قدم ابن آدم، آدم کی اولاد کے دونوں پیر حرکت نہیں کر سکتے جب تک یوم القیامت، قیامت کے دن جب تک کہ پانچ سوالوں کے جوابات نہ دے دیں. من عمر اینا افناہ، پہلا سوال اللہ پوچھیں گے، میں نے عمر دیا تھا تمہیں، کہاں ختم کیا تمہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، عمر ختم ہوتی ہے. لوگ جو کہتے ہیں عمر بڑھتی ہے غلط کہتے ہیں، عمر گھٹتی ہے. ہر ایک آپ کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بڑی عمر کا ہے، وہ جب 10 سال کا ہوگا تو اس کے 10 سال گھٹ گئے. 10 سال گھٹنے پر کیک کاٹیں گے؟ جاہل لوگ نا سمجھ، کامن سینس نہیں ہے. یعنی اسے حدیث، دلیل، قرآن یہ نہیں سوچو کہ افسوس کرنے کی بات. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، یہ گھڑیال تو بغیر آواز کے چلنے والے آج کل کے، پہلے آواز آتی تھی کٹ کٹ کٹ، یہ گھڑیال کی کٹ بول رہی ہے کہ تمہاری عمر کا ایک لمحہ کٹ ہو گیا. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، خالق نے تیری عمر کی ایک آن گھٹا دی. ایک سیکنڈ گھٹ گیا کٹ، اور ایک سیکنڈ گھٹ گیا کٹ. گھٹنے پر خوشی منانا، وہ بھی معلوم نہیں کیسا ختم ہوگا کر کے، وہاں تو سوال ہوگا. من عمر اینا افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہاں تم نے فنا کیا. بہرحال عزیزان محترم، میں عرض کروں گا ان پانچ سوالات کے بارے میں مختصراً، آپ حضرات 2-3 سوالات کے جوابات ہیں، اگلے جمعے پھر سنا ہوں گا. براہ کرم زبان میں اردو لکھے، اردو ہندی نہیں، اردو لکھے. دین اسلام، مذہب مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، ایجوکیشن کیا ہوئی، کیا پڑھا آپ نے. جھوٹ لکھنے کے لیے تو میں نہیں بولوں گا کہ آپ نے انگلش میڈیم پڑھا ہے، اردو میڈیم کہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ امام ہوں، خطیب ہوں، ممبر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو، لیکن اسلام اور مسلمان لکھے. ہم سب مسلمان، بلکہ میں اس بے وقوف کو بھی مسلمان کہتا ہوں جو مجھے کافر کہتا ہے تقریر میں، بھرے مجمع میں، اسے بھی میں مسلمان، کیونکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انه تعالی ذو فضل کریم مجید حکیم. بر الرؤوف الرحيم بر الرؤوف.